नमस्कार भारत, आज 8 जनवरी दिन रविवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अभिनेता ओम पुरी के निधन की मुंबई पुलिस कर रही है जांच, दाखिल की आकस्मिक मौत की रिपोर्ट। नोटबंदी के पूरे हुए 60 दिन सरकार का दावा, इससे आम लोगों की परेशानी घटी। वहीं आलोचकों ने कहा नहीं हुआ नोटबंदी से कोई खास फायदा।
जो काले धन की अर्थव्यवस्था है उस पर कोई असर हुआ नहीं है, और जो हमारी बाकी अर्थव्यवस्था है उस पर जबरदस्त धक्का लगा है। इन्वेस्टमेंट गिर गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है।
समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच मायावती ने जारी की 300 उम्मीदवारों की सूची, अपने दम पर सरकार बनाने का जताया भरोसा। न्यूज मेकर्स में आज सुनिएगा सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट में विजेता रही भारतीय टीम की गोलकीपर अदिति चौहान को।
इससे पहले जो तीन एडिशन हुए हैं उस तीनों में हम लोग चैंपियंस बने हैं, और तीनों बार हमने नेपाल को, नेपाल के अगेंस्ट फाइनल खेला था, उनसे जीता था।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। जाने माने फिल्म अभिनेता ओम पुरी के निधन के मामले में मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने आकस्मिक निधन की रिपोर्ट दाखिल की है और अपनी तरफ से उनकी मौत की जांच कर रही है। 66 साल के ओम पुरी अपने घर में मृत पाए गए थे, उनके सिर पर चोट के निशान थे। उनके नौकरों और पड़ोसियों के बयान में फर्क होने के कारण पुलिस ने यह रिपोर्ट दाखिल की है। पुलिस का कहना है कि यदि जाँच में कुछ नहीं निकला तो उनकी मौत को प्राकृतिक मौत मान लिया जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के साथ बेहतर संबंध रखना अच्छी बात है और केवल बेवकूफ या मूर्ख ही इसे गलत विचार कह सकते हैं। ट्रंप ने इस बारे में कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि हमारे सामने दुनिया में कई समस्याएं हैं और हम एक और समस्या नहीं चाहते। मेरे राष्ट्रपति बनने पर रूस अमरीका का ज़्यादा सम्मान करेगा और दोनों देश शायद मिलकर दुनिया की बड़ी समस्याओं और मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। उनके ये ट्वीट खुफिया विभाग के एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद आए हैं, जिसके अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप को जिताने के लिए निजी तौर पर साइबर अभियान चलाने के आदेश दिए थे। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति आलासान वियटरा ने कहा है कि वे सेना में हुए विद्रोह को खत्म करने के लिए एक समझौते तक पहुंच चुके हैं। वियटरा का कहना है कि पगार और काम करने के हालातों के संबंध में सैनिकों की मांगों पर विचार किया जाएगा, और उन्होंने सैनिकों से गुजारिश की है कि वे अपने अपने बैरकों में लौट जाएं। विद्रोही सैनिकों ने आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री एलन रिचर्ड डोनवाही को छोड़ दिया है, जिन्हें उन्होंने बंधक बना लिया था। डोनवाही केंद्रीय शहर बुआके में विद्रोहियों के साथ समझौते की कोशिश कर रहे थे, जहां शुक्रवार को विद्रोह शुरू हो गया था। रक्षा मंत्री के साथ तस्वीरें लेने के बाद विद्रोह में हिस्सा लेने वाले सैनिक ड्रामेन कोने ने कहा कि वो राष्ट्रपति के फैसले से खुश हैं। उन्होंने कहा, हम बहुत खुश हैं। हम देख सकते हैं कि ये वो राष्ट्रपति हैं जो देश का भविष्य चाहते हैं, और इन्हें बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्हें किसी विषय में पता चलता है वो उचित फैसला लेते हैं। हम इनसे खुश हैं। जहां जहां रास्तों की नाकाबंदी की गई है वहां से वो हटा लिए जाएंगे। हम अपने बैरकों में वापस चले जाएंगे और कारें फिर से आसानी से यहाँ वहाँ जा सकेंगी। सभी नाकाबंदी हटाई जाएगी। ये थे आइवरी कोस्ट में हुए सैन्य विद्रोह में हिस्सा लेने वाले सैनिक ड्रामेन कोने। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में हुए एक कार बम धमाके में कम से कम 43 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह बम धमाका तुर्की की सीमा के नजदीक सीरियाई शहर अजाज में हुआ है। हाल के दिनों में कथित इस्लामिक स्टेट ने अजाज शहर को निशाना बनाया है। यह बम धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस और तुर्की की पहल पर सीरिया में संघर्ष विराम चल रहा है। हिंसा की कुछ वारदातों के बावजूद आमतौर पर यहाँ संघर्ष विराम लागू है। पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मारियो सुआरेस का निधन हो गया है। वे 92 वर्ष के थे। साल 1974 तक चले सैन्य शासन के दौरान एक वामपंथी वकील के रूप में सुआरेस को जेल जाना पड़ा था और बाद में उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। इसके बाद आई सरकार में वे विदेश मंत्री के रूप में देश लौटे थे, जिस दौरान उन्होंने पुर्तगाल की विदेशी उपनिवेशों से संबंध तोड़ने के काम की निगरानी की। 1976 में सुआरेस गणतांत्रिक तरीके से चुने देश के पहले प्रधानमंत्री बने। बाद में उन्होंने दूसरा कार्यकाल पूरा किया और फिर 10 साल के लिए राष्ट्रपति रहे। मौजूदा राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ने कहा कि मारियो सुआरेस आजादी के लिए लड़े थे। उन्होंने कहा,
Partiu do nosso convívio de todos os dias.
मेरे परिवारजनों और दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति मारियो सुआरेस जन्मे और बड़े हुए थे लड़ाई करने के लिए। ये थे पुर्तगाल के मौजूदा राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के शब्द।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbcsindhi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, अभिनेता ओम पुरी के निधन को मुंबई पुलिस प्राकृतिक न मानकर इसे आकस्मिक निधन मान रही है और उसकी जांच कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस की मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने एक ADR यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दाखिल की है। अभिनेता ओम पुरी शुक्रवार को अपने घर में मृत पाए गए थे और कहा यह जा रहा है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन चश्मदीदों के बयानों में अंतर को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच शुरू की है, जिसमें मौत के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। खबर की पूरी जानकारी के लिए मैंने मुंबई में BBC संवाददाता सुशांत मोहन से बात की।
देखिए, ओम पुरी की मृत्यु के मामले में एक नया और तकनीकी पेंच जुड़ा है, वो ये कि मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में एक ADR या ये FIR से अलग एक रिपोर्ट होती है जो पुलिस दायर करती है आकस्मिक निधन या आकस्मिक मृत्यु या एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाने की स्थिति में। तो ओमपुरी की मृत्यु के बाद ये एक रिपोर्ट पुलिस ने दायर की है और ऐसा माना जा रहा है कि ओमपुरी की मौत की जांच होगी, क्योंकि उनका आकस्मिक निधन हुआ तो उनके सर के पीछे चोट थी, जैसा कि उनके पड़ोसियों ने बताया और जैसा कि सबसे पहले देखने वाले उनके नौकरों ने बताया कि उनके बयानों में अलग अलग बातें थी कि उनके सर के पीछे चोट थी, वो किचन में थे नहीं, वो बिस्तर के पास थे। तो इस तरह की दो तीन बातें आ जाने के बाद से पुलिस ने इस मामले में जांच करनी शुरू कर दी है और इसमें किसी को संदिग्ध नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ मृत्यु की जांच हो रही है कि आखिर मृत्यु हुई कैसी थी। अभी उनका पोस्टमार्टम भी हुआ था हाल ही में।
ये जो ADR है, ये FIR से कैसे अलग है और इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है?
देखिए, FIR के अंदर साफ तौर पर जो धाराएं होती हैं कानून की, वो लगा दी जाती हैं, आरोप लगा दिए जाते हैं, संदिग्ध लोग होते हैं, नामजद किया जाता है लोगों को कि इनके ऊपर ये आरोप है। लेकिन ADR जो रिपोर्ट है ये पूरी तरह से अलग है। ये पुलिस की जांच की रिपोर्ट होती है, जिसमें कि पुलिस ये देखती है कि वहां घटना स्थल पर जहां पर ओमपुरी मृत पाए गए वो देखेंगे वहां किस तरह की स्थिति थी, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो कि कूपर हॉस्पिटल में उनके मरने के बाद किया गया था उसकी रिपोर्ट में क्या निकल कर आया, और इन सब चीजों के बाद में पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि ये सामान्य मृत्यु थी, वाकई में उनको हार्ट अटैक आया था, या जैसा कि कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक के बाद ब्रेन हैमरेज चोट लगने से आया, वो गिर गए थे, ये किस तरह से हुआ इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। और अगर इस रिपोर्ट में कोई संदिग्ध बात निकल कर आती है या फिर ओमपुरी के परिवार से या उनके मित्रों में से कोई शिकायत दर्ज कराता है पुलिस के पास, तब ये जो जांच है, जो ADR है, ये FIR में तब्दील होगी।
जानकारी दे रहे थे सुशांत मोहन। 8 नवंबर को लागू की गई नोटबंदी को आज 2 महीने पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि देश के गरीब तबके ने नोटबंदी का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने बैठक में जो कुछ कहा उसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी।
आज हमें इस बात का बहुत आश्वासन है कि गरीब देश के गरीबों ने नोटबंदी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय को स्वीकारा है और उन्होंने दिल से माना है कि ये जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है ये देश की बुराई, भ्रष्टाचार के अभिशाप को समाप्त करने में बहुत ही प्रभावी साबित होगा।
ये थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। नोटबंदी के 2 महीने पूरे होने के बाद सरकार का दावा है कि लोगों की परेशानी कम हुई है। वहीं विपक्षी दल सरकार पर लोगों की परेशानी को अनदेखा करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की और सबसे पहले पूछा कि नोटबंदी का कितना फायदा हुआ और इससे नुकसान कितना हुआ।
अच्छा, देखिए, इसमें सरकार का फायदा नुकसान का कम है, समाज को फायदा नुकसान को ज्यादा हमें देखना चाहिए, और अगर काले धन की अर्थव्यवस्था पे कोई असर होता तो उससे समाज को बहुत फायदा होता, लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था पे तो कोई असर हुआ नहीं है। इसकी वजह से जो काली संपत्ति थी वो सारी वापस आ गई है कैश के फॉर्म में, जो और जो काली जो कमाई है वो वैसे ही चलती रहेगी, तो इसलिए इससे कोई जो काले धन की अर्थव्यवस्था उस पर कोई असर हुआ नहीं है। और जो हमारी बाकी अर्थव्यवस्था है उस पर जबरदस्त धक्का लगा है, इन्वेस्टमेंट गिर गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है और जो बैंक है वो क्राइसिस में इस समय जा रहे हैं, तो कुल मिला के इसमें अर्थव्यवस्था काफी एक तरह से क्राइसिस की दिशा में जा रही है।
क्या आकलन आप लोगों का है कि इस एक कदम से देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ और उसको पटरी पे आने के लिए अब कितना और वक्त लगेगा?
जो खबरें आ रही है कि इन्वेस्टमेंट गिर गया है और जो ट्रेड है वो गिर गया है 20-30%, तो उससे तो लगता है कि इस समय हमारी ग्रोथ रेट जो 2 महीने से चल रही है वो नेगेटिव में चल रही है। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी गिर गया है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो उससे लगता है कि अब रिसेशनरी कंडीशन अर्थव्यवस्था में आ रही है। क्योंकि इस समय जो इन्वेस्टमेंट गिरने से डिमांड है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए असर करती है, और जो कैश की शॉर्टेज है वो मुझे लगता है कि अभी और 6-8 महीने चलेगी, क्योंकि इतना जो करेंसी प्रिंट करना तुरंत संभव नहीं है। सब कुल मिला के मुझे लगता है कि आगे 1-2 साल तक इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे चलता रहेगा।
ये थे अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार। उधर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन नोटबंदी को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बैंक यूनियन आज से चेन्नई में 4 दिन की बैठक कर रही है, इसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने यूनियन के महासचिव CH वेंकट चलम से बात की।
स्थिति और भी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर खराब है, नोट सप्लाई बहुत कम है, इसलिए प्रॉब्लम बहुत है, कस्टमर्स को सफरिंग है, एम्प्लॉयज को तकलीफ है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए हमारा 4 दिन का कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस में हम डिसाइड करेंगे वो रिजर्व बैंक पूरा ब्रांचेस को एडिक्वेट नोट सप्लाई करना, इसलिए हम डिमांड करेंगे। और दूसरा बात है ATM और भी बंद है, 1 लाख ATM इज नॉट वर्किंग एट ऑल, तो वो भी ठीक करना है। हम धरना करेंगे, उसके बाद हड़ताल करेंगे पूरा इंडिया में।
सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति अब सुधर गई है, बैंकों के बाहर लाइनें कम हो गई हैं।
नहीं नहीं, वो सब गलत है, वो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट बोल रहा है, रिजर्व बैंक बोल रहा है, वित्त मंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, लेकिन पैसा किधर गया? पैसा रेड्डी साहब के घर में है, बैंक के अंदर नहीं। वो झूठ है, वो सच नहीं, पैसा नहीं है, बैंक के बहुत शॉर्ट है।
अब लगभग 60 दिन हो गए, किस तरह की दिक्कतों का सामना बैंक एम्प्लॉयज कर रहे हैं?
प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, जनता का पैसा बैंक के अंदर है, वो जनता को पैसा चाहिए तो वो विड्रा करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो शादी आता है, वो हार्वेस्टिंग सीजन है, फेस्टिवल का सीजन है, पैसा चाहिए, पैसा बैंक के अंदर है उनका, लेकिन हम देने के पैसा नहीं है। रिजर्व बैंक अनाउंसमेंट 24,000 देना है, बट बैंक्स आर नॉट एबल टू गिव, वो शर्म की बात है, दुख की बात है, सफरिंग ज्यादा है, वो गवर्नमेंट बोल रहा है वो सब गलत है।
बैंक कर्मचारियों के सामने किस तरह की दिक्कतें हैं?
वर्कलोड ज्यादा हो गया, ATM काम करता है नहीं, वो बंद है, वो पूरा लोग बैंक के अंदर आता है, कस्टमर लोग, हमको जगह नहीं है, आदमी नहीं है सर्विस देने का, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, हैवी रश होता है, नोट्स आर नॉट अवेलेबल, पीपल आर शाउटिंग, इतना गंदा बोलता है, सुनने के लिए हमारा सैलरी नहीं है, काम करने का सैलरी है।
तो ये दिक्कतें ज्यादा कहाँ कहाँ है?
ग्रामीण इलाका में भी है, बड़ा बड़ा सिटी में भी है। कस्टमर का गलत ना है, वो गवर्नमेंट का गलत है, रिजर्व बैंक का गलत। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, 2 बड़ा यूनियन संगठन है, वो दोनों पार्टिसिपेट करेगा। 10 तारीख को 11 तारीख को डिसीजन दे देंगे, नोटिस दे देंगे।
ये थे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकट चलम।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती शनिवार को 4 दिन में तीसरी बार मीडिया से रूबरू हुई। मायावती ने पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की और दावा किया कि उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। वहीं विरोधियों ने भी मायावती के इस दावे पर प्रश्नचिन्ह लगाने में देर नहीं की, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को उनके बयानों में गंभीरता नजर आती है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
हाथ में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट और जुबान पर उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती कल मीडिया से रूबरू हुई तो उनके तेवर जाने पहचाने थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर निशाना साधने के साथ दोनों के बीच गठजोड़ का आरोप भी लगाया।
वर्तमान में सपा परिवार की चल रही आपसी कलह वह इनकी सरकार के खासकर कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश में शुरू से चल रहे जंगलराज, इनकी सहयोगी व मित्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी, खासकर उनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी के बारे में एवं बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले से सावधान करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है।
मायावती ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी पार्टी अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। विरोधी पार्टियों ने उनके आरोपों और दावों को खारिज करने में देर नहीं की, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की राय में दूसरी पार्टियों से पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर मायावती बढ़त बनाने की कोशिश में है। अखबार जदीद खबर के संपादक मासूम मुरादाबादी कहते हैं,
मायावती की पार्टी इस एतबार से नंबर वन है कि वो पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है, उसके पूरे कैंडिडेट भी तैयार हैं और उसकी पूरी तैयारियां भी हैं। बाकी जो दो तीन पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके यहाँ टिकटों के बंटवारे का मुहूर्त ही नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी में सर फुटबॉल चल रही है, एक दूसरे की लैग पुलिंग हो रही है और अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता और इसका असर जो है बहुत ग्रास रूट तक है। अगर चुनाव होगा इसी हालत में तो चुनाव समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, मुझे लगता है।
समाज शास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण भी बहुजन समाज पार्टी की चुनाव पूर्व तैयारी को उसके लिए बढ़त की वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि मायावती की पार्टी की तैयारी बेहतर है और उसे नोटबंदी से नाराज लोगों का समर्थन भी मिल सकता है।
बहुत सॉलिड प्लानिंग है, बूथ मैनेजमेंट, बूथ प्लानिंग से लेकर के कैंपेनिंग, जो ग्रास रूट लेवल की कैंपेनिंग है वो बहुत अच्छी है उन लोगों की, वो मीडिया पर देख नहीं पाती। मायावती बहुत पहले से अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी थी अनऑफिशियली, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, ऑफिशियली उन्होंने अभी किया है तो उनके पास काफी समय उनके कैंडिडेट्स को मिला है। बीएसपी को जो मार्जिनल्स, गरीब, वो लोग जो डिमोनेटाइजेशन को से सफर किया है वो लोग बीएसपी की तरफ जा सकते हैं।
उम्मीदवारों के चयन को लेकर मायावती ने जातिगत और सामाजिक समीकरण भी साधने की कोशिश की है। मायावती का खास जोर मुस्लिम दलित समीकरण को साधने पर है। हालांकि मासूम मुरादाबादी की राय है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है। वो कहते हैं कि मायावती ने मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट दिए हैं लेकिन इससे वोट मिलने की गारंटी नहीं मिलती क्योंकि वो मुसलमानों के साथ सत्ता बांटने की बात नहीं करती हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मायावती को भले ही कमतर करके आंका जा रहा हो लेकिन वो बढ़त बना सकती हैं, लेकिन असल तस्वीर दूसरे दलों की रणनीति सामने आने के बाद ही साफ होगी।
वात्सल्य राय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का झगड़ा अभी तक सुलझा नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी नहीं की है, जबकि मायावती ने 300 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। क्या इसका उन्हें फायदा मिल सकता है? हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह से यही सवाल किया।
उत्तर प्रदेश का ये पहला इलेक्शन है जिसको सही मामलों में आप कह सकते हैं कि मल्टी कॉर्नर, बहुकोणीय या आप कह लें त्रिकोणीय कह लें, मैं समझता हूँ शायद आजादी के बाद पहली बार है। बीएसपी, एसपी और बीजेपी, ये तीनों पार्टियां हैं। हकीकत इस समय की ये है पल पल बलदेव समीकरण में, ये कहना बहुत बड़ा जोखिम भरा है कि कौन इसमें जीत सकता है। उत्तर प्रदेश में 50% तो समझ लीजिए कि पिछड़ा है, आधे में कमोबेश थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे तीन टुकड़े होते हैं जिसमें दलित है, माइनॉरिटी है और सवर्ण है। इसमें एक ऐसी चीज है कि जो माइनॉरिटी है वर्तमान परिस्थिति में ऐसा लगता है कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट देती है। उसके सामने जब ये पिक्चर क्लियर होती है कि किन दो खेमों में लड़ाई है, यानी बीजेपी का नियरेस्ट राइवल कौन है जो लाइकली बीजेपी को टक्कर देगा, तब तो वो उसकी तरफ चला जाता है, वो चाहे एसपी हो चाहे बीएसपी हो। लेकिन इस बार वो स्थिति बहुत साफ नहीं है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकमबेंसी थी, उसको अखिलेश ने बड़ी कोशिश की पिछले एक साल में ये बताने की कि ये जो है जिसके नाते जो आप लोग हमसे नाराज हैं वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अगर अखिलेश पूरी तरह से अलग हो जाते हैं इस लाइबिलिटी को छोड़ करके तो निश्चित तौर पर एंटी इनकमबेंसी का उनको बहुत कम सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि माइनॉरिटी वोट का बंटवारा लाइकली कम हो जाता था, लेकिन अगर किसी तरह का पैचअप हुआ या ऐसा लगा कि अखिलेश झुक गए तो निश्चित तौर पर माइनॉरिटी वोट का बंटवारा होगा, तो निश्चित तौर पर मायावती जी को ज्यादा फायदा होगा।
मायावती ने जिस तरह से अपनी सूची जारी की, तीन सूचियां वो जारी कर चुकी हैं।
जी जी जी,
बाकी दलों के मुकाबले उनकी लिस्ट पहले आई हुई है, क्या इस चीज का उन्हें कोई फायदा होगा?
फायदा तो मायावती जी के यहाँ कोई परिवार में झगड़ा नहीं है, मायावती जी को ये देखना नहीं है कि बीजेपी की लिस्ट आ जाए फिर हम करें, इसलिए आज वो इस स्थिति में है और लगातार वो कोशिश कर रही है कि मैसेज देने की कि मैं ही हूँ, मैं बीजेपी को, अगर आप लोग आ जाओगे तो मैं बीजेपी को हरा सकती हूँ।
क्या मायावती का मैसेज नीचे तक पहुँच रहा है?
मायावती का जो वोट बैंक अभी तक है और जो संभावित जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो दोनों वोट बैंक का दृष्टिकोण बड़ा क्लियर है। जो 18% दलित है उसको नोटबंदी या विकास, इससे आज की तारीख में बहुत लेना देना नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मायावती का वोट बैंक बहुत सरप्राइज करता है क्योंकि वो साइलेंट है। वही हालत माइनॉरिटी की भी है। अगर तो ये समाजवादी पार्टी पुराने स्वरूप में लड़ती तो भी एडवांटेज मायावती का था, मिडिल क्लास के लिए विकास भी महत्वपूर्ण है और लॉ एंड ऑर्डर भी महत्वपूर्ण है। और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका मायावती को मानता है, लेकिन करप्शन जो बहुत बढ़ जाता है ये उनका माइनस पॉइंट है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। दिल्ली से निकलने वाले तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी मानसी दास। मानसी, क्या है पहली खबर आज अखबारों में?
शुरू करते हैं जनसत्ता और अमर उजाला में छपी तस्वीरों से। श्वेत शिमला शीर्षक के साथ जनसत्ता ने तस्वीर छापी है शिमला के मॉल रोड की। लिखा है कि रोहतांग दर्रा और इसके आसपास के इलाके 60 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की चादर से दब गए हैं। शिमला की ही एक तस्वीर छापी है अमर उजाला ने और लिखा है कि अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सर्दी बढ़ने का अनुमान है। जनसत्ता के पहले पन्ने से एक खबर बता दूं जो है आम बजट के बारे में। अखबार का कहना है कि बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से होगी और 1 फरवरी को ही आम बजट पेश होगा, जिसके साथ रेल बजट भी पेश किया जाएगा। इस संबंध में अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। इसमें दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संबोधन के कार्यक्रम का भी उल्लेख है। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष ने केंद्रीय बजट की तारीख मतदान खत्म होने के बाद रखने की मांग की थी। इधर हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक अखबार के अनुसार, माफ कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने से में छपे एक अखबार के अनुसार कांग्रेस नेता के वी थॉमस की अध्यक्षता वाली संसदीय पैनल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटबंदी के मामले में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल से 10 सवाल पूछे हैं। ये सवाल फैसला लेने की प्रक्रिया, अर्थव्यवस्था पर इसका असर और बीते 2 महीनों में बार बार बदलते RBI नियमों के बारे में है। उर्जित पटेल को जनवरी 28 को कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। जो सवाल उन्हें भेजे गए हैं उनमें उनसे पूछा गया है कि अगर कैश निकालने के लिए कानूनन किसी तरह की बंदिशें नहीं हैं तो उनको मिली ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए उन्हें सजा क्यों न दी जाए या उन्हें इस कुर्सी से क्यों न हटाया जाए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु में होंगे। बेंगलुरु में दुनिया भर से प्रवासी भारतीय जुटे हैं। वहीं ये शहर अपने पुराने अंदाज को तलाशने की जद्दोजहद में भी लगा है। नए साल की पूर्व संध्या पर महिलाओं के साथ हुई अभद्रता के बाद कई महिलाएं नए नए तरीकों से अपनी बात रखने के लिए सामने आ रही हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ठीक एक हफ्ते पहले बेंगलुरु के निवासी इस बात से निश्चित थे कि उनके शहर में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन नए साल के शुरुआत से ही महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। महात्मा गांधी रोड, ब्रिगेड रोड की छेड़छाड़ की घटना के बाद अभी भी ऐसे मामले थमे नहीं हैं। कामनहली के मामले में 5 युवक गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन एक नया मामला शहर के अरबिक कॉलेज के पास आया है जिसमें बुरखा पहनी हुई महिला के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है। ऐसी घटनाओं से परेशान कई महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि सामान्य महिलाएं भी गैर मामूली तरीके के प्रदर्शन कर रही हैं। इनमें से एक हैं संध्या मिंडोंसा, जिन्होंने अपनी बात कुछ जान पहचान की महिलाओं को बताई लेकिन बात फैल गई। संध्या ने कहा,
बैंगलोर में जो हुआ न्यू ईयर्स ईव के बाद कुछ लोग बोल रहे थे ये लड़कियां वहां क्यों जाते हैं, ऐसे क्यों कपड़े पहनते हैं, ये सब कौन है पूछने वाले, और ये सब सुन के लड़कियों को औरतों को डर नहीं होना चाहिए, उनको जब चाहे वो बाहर जा सकते हैं, पब्लिक स्पेस यूज करते हैं।
दिलचस्प बात ये भी है कि इन महिलाओं में से 5 वो भी थी जो महिलाओं की टैक्सी सर्विस चलाती हैं। ये टैक्सी सर्विस का नाम है टैक्स शी, जो सिर्फ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोगों को अपनी सेवाएं देती हैं। टैक्सी के सुमन कहती हैं,
पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है, जो हम न्यूज चैनल से सुन रहे हैं, जो बैंगलोर में हुआ है घटित, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध हम यहाँ खड़े होकर ये जताना चाह रहे हैं समाज को कि हमारा भी अपना एक अस्तित्व है, हम अकेले जा सकते हैं, हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। हम क्यों सुरक्षित नहीं है समाज में? कहीं पर भी, कहीं अगर शॉपिंग मॉल में जाना है तो हमें किसी का सहारा चाहिए, और अगर हम जा रहे हैं तो हमारे साथ क्यों अभद्रता से पेश आया जाता है? आखिर हम भी इंसान हैं।
आने वाले दिनों में महिलाएं बेंगलुरु में तरह तरह से प्रदर्शन करने वाली हैं। इनमें से एक प्रदर्शन है जहां महिला ऐसे कपड़े पहनेंगी जो महिलाएं पसंद करती हैं। दरअसल पिछले हफ्ते की घटनाओं में ये बात सामने आई है कि महिलाएं अगर सामान्य कपड़े भी पहने तो भी कुछ पुरुषों को ये बात पसंद नहीं आती है और वो उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
साल 2017 की शुरुआत में ही भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए 4 जनवरी को सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप वुमेन्स चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम लगातार 4थी बार चैंपियन बनी है। बीबीसी न्यूज मेकर्स में आज मुलाकात इसी टीम की गोलकीपर अदिति चौहान से।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे। नए साल की शुरुआत काफी शानदार रही अगर हम खेलों की बात करें तो, और एक बार फिर से दिखा दिया भारतीय महिलाओं ने कि वो किसी से कम नहीं है। इसी हफ्ते सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में बांग्लादेश को 3-1 से हराया भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने। दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन कप यानी कि सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता भारत ने, और इसी भारतीय टीम की गोलकीपर अदिति चौहान है हमारे साथ और वो है बीबीसी न्यूज मेकर्स में।
जी जी, थैंक यू सो मच।
इतना ही नहीं, 2015 में ब्रिटेन के एक प्रोफेशनल क्लब के लिए खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर भी हैं अदिति चौहान। फुटबॉल एक ऐसा खेल जिसमें जोश है, जुनून है और बहुत सारी मोहब्बत भी है, तो अदिति इस जीत तक पहुंचने के लिए काफी सारी तैयारी करनी पड़ी होगी, है ना? तो कुछ बताइए ना उसके बारे में।
काफी लंबा प्रिपरेशन था और हम पर काफी कॉन्फिडेंट थे हम लोग, क्योंकि जितनी बार भी सैफ चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई है, हम तीनों इससे पहले जो 3 एडिशन हुए हैं उस तीनों में हम लोग चैंपियंस बने हैं, और तीनों बार हमने नेपाल के अगेंस्ट फाइनल खेला था, उनसे जीता था।
वैसे इंडिया में वुमेन्स फुटबॉल की हिस्ट्री इतनी रिच तो है नहीं, लेकिन अगर अब बात की जाए कि भाई अब शायद हालात थोड़े पहले से बेहतर होंगे, इस बात को लेकर के अदिति का क्या कहना है?
हाँ बिल्कुल, जैसे आपने सही बोला, क्योंकि जब से मैंने खेलना शुरू किया 8-9 साल पहले, तब से अब तक बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है वुमेन्स फुटबॉल इंडिया में, और स्टैंडर्ड भी और अपॉर्चुनिटीज भी हर चीज में। स्पेशली अभी अगले महीने इंडिया में पहली बार लीग शुरू होने वाली है, वुमेन्स लीग, तो वो भी एक मेजर स्टेप है आगे बढ़ने का।
वैसे अगर हम रैंकिंग की बात करें तो जो भारत की मेंस रैंकिंग है फुटबॉल में, वो महिलाओं की रैंकिंग से काफी नीचे है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मेंस फुटबॉल की रैंकिंग 135 है, तो वहीं वुमेन्स फुटबॉल की रैंकिंग 54 है। इस बात पे अदिति आप क्या कहती हैं?
डेफिनेटली एक तो मतलब कंपेयर करना भी सही नहीं है, क्योंकि फुटबॉल की जो हिस्ट्री है इंडिया में वो ज्यादा पुरानी नहीं है, और ये जो स्पोर्ट है ये अपकमिंग स्पोर्ट है और बहुत अच्छे और बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में, इसलिए वो रैंकिंग सर मेंस रैंकिंग जो है वो अभी टाइम लेगी इम्प्रूव करने के लिए। वुमेन्स फुटबॉल में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और अच्छा करने का वर्ल्ड लेवल पे, और बेटर रैंकिंग और अच्छा परफॉर्मेंस देने का इंटरनेशनल लेवल पे।
अब इतना सब कुछ पाने के लिए परिवार का सहयोग तो होना बहुत जरूरी है, तो आपके साथ कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आई अदिति जब आपने कहा कि आप फुटबॉल खेलना चाहती हैं?
इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था जब पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि फुटबॉल खेलना है, लेकिन जब उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा और हमारी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स देखे, तो उन्होंने पूरा पूरा सपोर्ट किया है।
तो ये थी भारतीय फुटबॉल टीम की गोलकीपर अदिति चौहान। आपको न्यूज मेकर्स कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर, और इसी के साथ दीजिए इजाजत इंदु पांडे को, फिर से मिलेंगे।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। जाने माने फिल्म अभिनेता ओम पुरी के निधन के मामले में मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने आकस्मिक निधन की रिपोर्ट दाखिल की है और अपनी तरफ से उनकी मौत की जांच कर रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के साथ बेहतर संबंध रखना अच्छी बात है और केवल बेवकूफ या मूर्ख ही इसे गलत विचार कह सकते हैं। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासान वियेटारा ने कहा है कि वे सेना में हुए विद्रोह को खत्म करने के लिए एक समझौते तक पहुंच चुके हैं। सीरिया में हुए एक कार बम धमाके में कम 43 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह बम धमाका तुर्की की सीमा के नजदीक सीरियाई शहर अजाज में हुआ है। पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मारियो शुआरेस का निधन हो गया है। वे 92 वर्ष के थे। साल 1976 में शुआरेस गणतांत्रिक तरीके से चुने देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। बाद में उन्होंने दूसरा कार्यकाल पूरा किया और फिर 10 साल के लिए राष्ट्रपति रहे थे। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया दीपक जसरोटिया ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।